इब्रानियों के नाम खत सातवां बाब फसीलत कहानते मलकी सादक।
क्योंकि ये मलकी सादक शाह शालीम खुदा ताला का काहिन था, जब इब्राहिम बादशाहों को मारकर वापस आ रहा था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसे बरकत दी, और इब्राहिम ने उसे सब चीजों की दहयकी दी। पस ये अव्वल अपने नाम के मानी के मुताबिक सदाकत का बादशाह है, और फिर शाह शालीम यानी सलामती का बादशाह। ये बेबाप बेमां बेनसब नामा है, ना अयाम की इब्तदा रखता है और ना जिंदगी का इख्तिताम, बल्कि इब्ने खुदा की मानंद है और अबदन काहिन रहता है। बस गौर करो कि ये कितना बड़ा होगा जिसे सलफ दीन इब्राहिम ने माले गनीमत की उम्दा से उम्दा चीजों की दहयकी दी। अब जो बनी लावी में से कहानत का ओहदा पाते हैं, उन्हें हुक्म है कि उम्मत से यानी अपने भाइयों से शरीयत के मुताबिक दहयकी लें, हालांकि वो भी इब्राहिम की सुलभ से हैं, मगर जिसका नसब उनसे अलहदा है उसने इब्राहिम से दहयकी ली और उसी को बरकत दी जिससे वादे किए गए थे, और लारेब छोटा बड़े से बरकत पाता है। और यहां तो मरने वाले आदमी दहयकी लेते हैं, मगर वहां वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि वो जिंदा है। बल्कि हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दहयकी लेता है इब्राहिम के वसीले से दहयकी दी, क्योंकि जिस वक्त मलकी सादिक ने इब्राहिम का इस्तकबाल किया वो हनूज अपने बाप की सुलभ ही में था।
बस अगर लावियों की कहानत से कामलियत होती, क्योंकि उसी की मातहती में कौम को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलकी सादक के रुतबे का मबऊस होकर जो हारून के रुतबे का ना कहलाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना भी जरूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले में शामिल है, जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनांचे जाहिर है कि हमारा खुदावन यहूदा में से पैदा हुआ और इस कबीले के हक में मूसा ने कहानत का कोई जिक्र नहीं किया, और ये साफ तर जाहिर होता है जबकि मलकी सादक की मानिंद एक काहिन मबऊस होता है जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुदरत के मुताबिक मुकर्रर हुआ है, क्योंकि ये गवाही दी गई है कि तू मलकी सादक के रुतबे का दायमन काहिन है। बस पहले हुक्म की तो कमजोर और बेफायदा होने के सबब से तनसीख होती है, کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو تکمیل تک نہیں پہنچایا، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید داخل ہوتی ہے جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں، اور یہ بغیر قسم کے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن ٹھہرے، مگر یہ قسم کے ساتھ اسی کی طرف سے ٹھہرا جس نے اس سے کہا کہ خداوند نے قسم کھائی اور پچھتائے گا نہیں کہ تو دائمن کاہن ہے۔ اس طرح یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ہوا،
اور وہ تو کثرت سے کاہن مقرر ہوئے، اس لیے کہ موت کے سبب سے قائم رہنے نہ پاتے تھے، مگر یہ چونکہ دائمن قائم ہے، لازوال کہانت رکھتا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں مکمل طور پر نجات دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی شفاعت کے لیے وہ دائمن زندہ ہے۔ چنانچہ ہمارا کاہن اعظم ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کہ وہ مقدس، معصوم، بے ریا، گناہ گاروں سے علیحدہ اور افلاک سے بھی متعال کیا گیا ہو، جو سردار کاہنوں کی طرح اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے اور پھر قوم کے گناہوں کے لیے ذبیحے چڑھائے، کیونکہ اس نے ایک بار قطعی طور پر یہی کیا جب اس نے اپنے آپ کو چڑھایا، کیونکہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو کاہن اعظم مقرر کرتی ہے، مگر وہ کامل کلام جو شریعت کے بعد ہوا، اس نے بیٹے کو مقرر کیا جو دائمن مکمل ہے۔